सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे सागरमाला, भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और अवसंरचना में नई उड़ान पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्र। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्वागत है आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में।
जी धन्यवाद।
प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आप हमारे सभी श्रोताओं को ये बताएं कि सागरमाला क्या है, ये भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के सुरक्षा और भारत के उस सपने के लिए कितना जरूरी है जिसमें भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है।
बाबू जी, सागरमाला जो परियोजना है, ये मार्च 2015 में ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जो बंदरगाह प्रेरित विकास है, जो हमारा मैरिटाइम कनेक्टिविटी है और मैरिटाइम जो व्यापार है, उसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए और इस तरह विकसित किया जाए कि हमारे जो बंदरगाह हैं उनका आधुनिकीकरण हो, उनका विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे वो कैसे खरे उतरे, कनेक्टिविटी में कैसे सुधार किया जाए, वैश्विक कनेक्टिविटी में भी और भारत के जो पोर्ट्स हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, एक मैरिटाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन या पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो परिकल्पना थी उसको कैसे साकार किया जाए, जो तटीय समुदाय उनके विकास में, उनके अंतर्राष्ट्रीयकरण में कैसे ये योगदान दे, और कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज जिसे हम कहते हैं तटीय शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन, उसको कैसे बढ़ा जाए। तो मोटे तौर पर जो भारत का मैरिटाइम विजन 2030 है और विकसित भारत की जो योजना है सरकार की, उसको साकार करने में कैसे मैरिटाइम सेक्टर और कैसे मैरिटाइम कनेक्टिविटी एक योगदान दे सकता है, उसके लिए इस प्रोग्राम को लाया गया। 11 साल बाद आज हम देखते हैं कि बहुत व्यापक पैमाने पर विकास हुआ है। करीब 850 परियोजनाएं, 845 टू बी प्रिसाइज परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, करोड़ों का निवेश ऑलरेडी हो चुका है। आज तो भारत के 9 पोर्ट्स दुनिया के 100 सबसे अच्छे और सबसे विकसित पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और मैरिटाइम कनेक्टिविटी और मैरिटाइम अपग्रेडेशन, इन दोनों क्षेत्रों के विकास के साथ साथ जो मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट और ट्रेड है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है सागरमाला ने किया है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का जो कुल व्यापार है, अगर हम उसका वॉल्यूम देखें तो 95% सिर्फ भारत के तमाम बंदरगाहों से आता है, और अगर हम इसकी इवैल्यूएशन करें तो इसके वैल्यूएशन में हमें पता चलता है कि 70-75% टोटल जो भारत का व्यापार है वो इस पर निर्भर है। तो बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ही क्रिटिकली इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसको विकसित करने के लिए सागरमाला की परियोजना को लाया गया।
बिल्कुल, साथ ही साथ आपने बहुत अहम बात कही कि बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाने में सागरमाला परियोजना का बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर बात की जाए भारत के जो पोर्ट्स हैं, वो 915 मिलियन टन कार्गो एक साल में या एक वित्तीय वर्ष 2025-26 की अगर बात की जाए उसमें इतना हैंडल करते हैं। कितना जरूरी है भारत के आयात और निर्यात के लिए ये कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता हुआ भारत का जो बंदरगाह, जो पूरी प्रणाली है, वो और ज्यादा मजबूत हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचे, ताकि दो शब्द कनेक्टिविटी बेहतर हो पाए और साथ ही साथ सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में भारत अग्रणी हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
भारत की जो तटरेखा है वो 11,099 किलोमीटर की है और लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से जुड़ी हुई व्यवस्था है, और हमारे 9 प्रदेश हैं जो पूरी तरह से मैरिटाइम ट्रेड और मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है। यही वो प्रदेश हैं जिनके वजह से हम अपने मैरिटाइम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को बढ़ा पाए, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़ा है, और साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी देश है, नेपाल और भूटान जैसे देश भारत पर निर्भर है अपने व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात को बढ़ाने के लिए। तो न सिर्फ ये भारत की अपनी आर्थिक नीति और अपनी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट की नीति है, भारत की विदेश नीति में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत के जो छोटे पड़ोसी मित्र देश हैं इनके लिए भी एक तरह से ये जीवन रेखा का काम करते हैं भारत के पोर्ट्स, और इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि सागरमाला का बहुत बड़ा योगदान है। तो पोर्ट अपग्रेडेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी पोर्ट पे जो रिटर्न टाइम होता था, एक शिप भारत के किसी बंदरगाह पर आया, उसने अपने शिप को डॉक किया और वहां से अनलोडिंग का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में पहले से अभी मुझे लगता है कि पहले 96 घंटे लगते थे, अब वो घटकर 48 घंटे हो गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है।
जी बिल्कुल।
जो ये टर्न अराउंड है इसकी वजह से ज्यादा व्यापार किया जा सकता है। जो शिप्स आते हैं भारत, कार्गो शिप्स, उनके लिए ये सुविधा बहुत अच्छा सुविधा हो गई है और इससे व्यापार को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
और रोजगार जो उपलब्ध होगा भारत के युवाओं के लिए, उसकी दर और ज्यादा बढ़ेगी इसकी वजह से।
जी बिल्कुल, रोजगार को बढ़ाने के लिए आपने अगर सागरमाला का तमाम जो दस्तावेज भारत सरकार ने हाल के दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज ने जो भी इस तरह के दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं, उसमें रेखांकित किया गया है कि इस कनेक्टिविटी में, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण में, उनके विकास में, औद्योगिकीकरण में, जो कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट है खासतौर से, उसमें इस बात पर बहुत फोकस किया गया है कि इसमें कैपेसिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो, फिशिंग और कोस्टल टूरिज्म को बढ़ाया जाए। पोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि कोस्टल टूरिज्म को और कोस्टल एरियाज में कम्युनिटी डेवलपमेंट को और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाया जाए। तो इससे न सिर्फ रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे बल्कि साथ ही साथ एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। और पिछले 11 सालों में हमने देखा है कि बहुत व्यापक पैमाने पर बढ़ा भी है। अगर आप सुभाष चंद्र पोर्ट कलकत्ता जाएं या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पश्चिम की तरफ मुंबई की तरफ जाएं, हर तरफ आप देख रहे हैं कि तटीय पर्यटन को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये एक तरह से इकोसिस्टम बनाने की कोशिश भारत सरकार की है जिसमें न सिर्फ रोजगार बढ़े बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बने जिसमें रोजगार के तमाम स्तरों पर तमाम संभावनाएं सामने आए।
सागरमाला 2.0 के लिए भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव है करीबन 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजटीय समर्थन का, और साथ ही साथ प्रमुख जो 12 बंदरगाह हैं और 200 से अधिक जो गैर प्रमुख बंदरगाह हैं उनको और ज्यादा बेहतर बनाने का। जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर निवेशक की बात देखते हैं कि भारत सरकार अपने वादों के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें बंदरगाहों की इस प्रणाली को बेहतर करना है, साथ ही साथ आयात निर्यात को और बेहतर करना है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में अपने आप को अग्रणी बनाना है, निवेशकों के लिए कितना अहम ये एक साइन कह सकते हैं या चिन्ह कह सकते हैं, उनको भारत की ओर आकर्षण करने का ये कितना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
देखिए सागरमाला 1.0 अगर हम कहें, तो सागरमाला की पहली कड़ी थी मार्च 2015 में जब उसे लॉन्च किया गया, तब भारत का उद्देश्य ये था सागरमाला के जरिए कि भारत के तमाम जो बंदरगाह हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे, वो तमाम बंदरगाह जो विश्व व्यापार में भारत की भूमिका है उसको बढ़ाने में योगदान दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे कोई भी कमी न रहे। आज 11 साल बाद मुझे लगता है कि ये बहुत ही टाइमली है कि सागरमाला 2 का आगाज किया जाए और ये भारत का जो मैरिटाइम विजन है 2030 या मैरिटाइम अमृतकाल विजन है 2047, इन दोनों के साथ बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि ये उनके साथ एक सिंक करता है। अब सागरमाला 2 से जो भारत का मैरिटाइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भारत के मैरिटाइम ट्रेड को किस तरह से नए स्तर पर ले जाया जा सके, किस तरह से हिंटरलैंड कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए और भारत के जो पोर्ट्स हैं उनकी इनलैंड कनेक्टिविटी, जिससे कि जो हमारा व्यापार तटीय क्षेत्रों में हो रहा है उसको तेजी से कैसे भारत के हिंटरलैंड में लाया जाए, उस पर काफी फोकस करने की कोशिश है। और भारत को वैश्विक मैरिटाइम ट्रेड का एक हब बनाने में भी सागरमाला 2 की बहुत बड़ी भूमिका मैं देखता हूं। अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ युद्ध में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में एक बात बहुत स्पष्ट है कि मैरिटाइम ट्रेड बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है और इसको और सुधारने के लिए जरूरी है कि भारत ज्यादा तेजी से जो ट्रेड हो रहा है, जो शिप्स आ रहे हैं उनमें माल के उतरने और माल की ढुलाई में बहुत समय न लगे, जल्दी से जल्दी हम ये अनलोडिंग का प्रोसेस करें जिससे कि ट्रेड को और स्मूथ किया जा सके और फास्टन किया जा सके इस प्रोसेस।
बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, आत्मनिर्भरता पर भारत सरकार लगातार जोर दे रही है। हम देख रहे हैं कितने ही ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत लगातार आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और बाकी जो विकसित देश हैं वो भी भारत के मॉडल की तरफ नजर कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि भारत किस तरीके से विकास करता है। जलमार्गों की अभी आपने बात की कि पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से जलमार्गों का जो ज्ञान है या उनसे जुड़ी हुई जितनी भी नॉलेज है वो जिस देश के पास हो और अगर वो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में अहम भूमिका निभा रहा हो तो उसके लिए और उसके मित्र देशों के लिए बहुत अहम है। कितना जरूरी होगा भारत के लिए कि जलमार्ग परिवहन न सिर्फ भारत के आसपास अपितु पूरे विश्व में उसका ज्ञान अर्जित करे और अपने जो सपना है विकसित भारत बनने का उसमें उस चीज को पूरी तरह से लगाए।
भारत की जो मैरिटाइम ट्रेड की कैपेसिटी है इसको बढ़ाने के लिए ये जानना जरूरी है कि दुनिया के जो अग्रणी देश हैं मैरिटाइम ट्रेड में और पोर्ट डेवलप में उनसे कैसे सीखा जाए
जी।
और इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के तमाम कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम देशों, यूरोप के मुझे लगता है बहुत सारे देशों से इस चीज को सीखने की जरूरत है, पश्चिम एशिया के तमाम मित्र देश हैं जिनसे भारत बहुत कुछ सीख सकता है। तो मुझे लगता है कि ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के तहत इन सपनों को साकार किया जा सकता है। जहां तक मैरिटाइम ट्रेड की सेंट्रैलिटी का सवाल है, ये आगे आने वाले समय में विकसित भारत 2047 के उद्देश्य के हिसाब से भी और भारत के एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जरूरी है कि मैरिटाइम ट्रेड को और बढ़ाया जाए, इसको और सुगम और ज्यादा इफिशियंट किया जाए, और इन तमाम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि पोर्ट्स को और एडवांस किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। न सिर्फ हम दुनिया के अग्रणी देशों में रहें बल्कि भारत तमाम देशों में टॉप 3 टॉप 5 कंट्रीज में जब आएगा तभी आर्थिक स्तर पर भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, और 2047 का जो हमारा लक्ष्य है भारत का और भारतीयों का, उसको साकार करने में मैरिटाइम ट्रेड, मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट और साथ ही साथ जो कोस्टल टूरिज्म है उसको भी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। 1 करोड़ रोजगार इस पूरी परियोजना से निकलने की संभावना है। तमाम भारत के प्रदेश है वो इस पर काम कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार की एजेंसीज हैं जो इस पर काम कर रही है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मुझे लगता है कि रोजगार के सृजन में भी इसमें फोकस लगातार बनाए रखना होगा जिससे कि हम न सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट में बल्कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, कनेक्टिविटी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इनलैंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इन तमाम क्षेत्रों में हम देख सकें कि रोजगार व्यापक पैमाने पर बढ़ा है।
बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, हमने देखा कि किस तरीके से भारत की प्रणालियां मजबूत हैं, इसी वजह से न तेल और गैस के दाम हमारे देश में बढ़े, बिल्कुल विपरीत हुआ बाकी कई देशों में जहां पर तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं इस वक्त पश्चिम एशिया के संघर्ष की वजह से। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कच्चे माल की आवाजाही में कोई परेशानी नहीं हुई, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल लगातार मिलता रहा। कितना जरूरी है ये कि मैन्युफैक्चरिंग हब अगर भारत बनना चाहता है या बनने की दिशा में अग्रसर है तो ये जो सप्लाई चेन है ये बिल्कुल बिना बाधा के स्मूथली चलता रहे, और उसमें जल मार्ग से परिवहन की कितनी ज्यादा अहमियत है?
देखिए, इन दोनों ही क्षेत्रों में मुझे लगता है कि कार्गो हैंडलिंग जो क्षमता है पश्चिम एशिया की जो क्राइसिस है उससे, और पिछले काफी समय से जो भी ऐसे क्षेत्र हैं वेस्ट एशिया में या रशिया यूक्रेन का युद्ध है, इनसे जहां भी समस्याएं दूसरे देशों को हुई, भारत को उतनी समस्या नहीं हुई क्योंकि भारत की कार्गो हैंडलिंग क्षमता बहुत अच्छी है और साथ ही साथ भारत की जो जिसे हम कहते हैं लॉजिस्टिक कैपेसिटी बहुत अच्छी रही है। इन दोनों ही चीजों में मुझे लगता है कि भारत ने बहुत दक्षता हासिल की है और इस वजह से जो कार्गो हैंडलिंग और कार्गो ट्रांसपोर्ट है उसमें कभी दिक्कत नहीं आई, तो क्राइसिस के मोमेंट में भारत ने अपनी कैपेसिटीज को मैनिफेस्ट किया। आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि ये जो क्राइसिस मोमेंट्स हैं या जो ऐसी स्थितियां आई हैं पश्चिम एशिया में उसके मद्देनजर आगे क्या संभावनाएं हो सकती है इनलैंड वाटरवेज को, तो इनलैंड वाटरवेज को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने काफी बड़े कदम उठाए हैं। पिछले 11 सालों में इनलैंड वाटरवेज में जो समय लगता था उसको बहुत बड़े स्तर पर कम किया गया है। खासतौर पर जो रो पैक्स होते थे, जो ऐसे शिप्स या ऐसे बोट जो वाहन और यात्री दोनों को ले जाते हैं, फेरी सर्विसेज में बहुत बड़ा निवेश हुआ है, करीब 1,250 करोड़ के निवेश की बात हुई है और इसमें से 17 परियोजनाएं पूरी भी की जा चुकी हैं। इनलैंड वाटरवेज न सिर्फ गंगा और हल्दिया के बीच में जो उत्तरी भारत में है बल्कि दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में नर्मदा और मांडवी नदियों में जो शहरों को जोड़ने की बात है, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और मुझे लगता है इनलैंड वाटरवेज अगर भारत के और सुदृढ़ होते हैं तो भारत का जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो भी बढ़ेगा और इस ट्रेड के बढ़ने से व्यापार करने की क्षमता बढ़ेगी और भारत का विश्व व्यापार में भी योगदान बढ़ेगा। क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं कि जो हिंटरलैंड स्टेट्स हैं, वो प्रदेश जो सीधे बंदरगाहों से नहीं जुड़े हैं, जिनका समुद्र को एक्सेस नहीं है, उनके एक्सपोर्ट में समस्याएं आती हैं। बहुत समय ऐसा भी होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बंदरगाहों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते हैं। जब इनलैंड वाटरवेज कैपेसिटी बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि इन समस्याओं से भी निपटने में हमें मदद मिलेगी और भारत का विश्व व्यापार में भी योगदान बढ़ेगा। और इन तमाम चीजों में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की जो सप्लाई चेन कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए भी न सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट की जरूरत है बल्कि इनलैंड वाटरवेज को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है और यूरोप के तमाम देशों से ये भी सीखने की जरूरत है कि भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनलैंड वाटरवेज को कैसे हम एक केंद्रीय स्थान दें। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड तीनों ही क्षेत्रों में भारत दुनिया के तमाम देशों से पीछे रहेगा। तो इसलिए भी जरूरी है कि इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाया जाए।
बिल्कुल प्रोफेसर मिश्रा, इतनी अहम चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े, हमारे श्रोताओं को इतने सरल ढंग से आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
सुर्खियों में